दीवा आर्यांश के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट आई हुई थी। वहां वो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही थी। इस बीच दीवा की तबीयत खराब हुई और वो दौड़कर बाथरूम में गई। दीवा को खाने की स्मेल से अजीब सा महसूस हुआ, उसे उल्टी हो रही थी। दीवा को एक बार के लिए यह वहम हुआ कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। दीवा ने खुद को नॉर्मल किया और बाहर आई तो उसने देखा आर्यांश आराम से बैठकर मज़े से हॉटपॉट खा रहा था। बाहर आते ही दीवा को फिर से उस खुशबू से बेचैनी महसूस होने लगी। आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो उसके पास आया और परेशान स्वर में पूछा, तुम ठीक हो ना? नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है और इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? दीवा ने जवाब दिया। ठीक है, आर्यांश ने कहा और फिर दीवा का हाथ पकड़कर उसे काफी प्यार से नीचे लाने लगा। उसने बिल पे किया, तब तक नीचे दीवा के लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। बाहर निकलते ही दीवा ने राहत की सांस ली। बाहर निकलते ही दीवा ने आसमान की तरफ देखा, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरा आसमान तारों से झिलमिल रहा था। उसे देखकर दीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे देखते ही दीवा का मूड फ्रेश हो गया था। उसने आर्यांश का हाथ पकड़ा और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलो ना आर्यांश, किसी शांत जगह पर चलकर तारे देखते हैं। आर्यांश का मूड भी अब तक बिल्कुल सही था, लेकिन दीवा की बात सुनकर अचानक उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। आर्यांश की आंखें लाल हो रही थीं, मानो वो इस वक्त किसी बुरी याद से गुजर रहा हो। उसके चेहरे के भाव जब भी इस तरह अचानक से बदल जाते थे तो दीवा को बहुत डर लगता था। आर्यांश ने दीवा की तरफ अपनी ठंडी निगाहों से देखा और कहा, याद रखना, मेरे सामने कभी तारे देखने का जिक्र मत करना। दीवा ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया था। उसे आर्यांश से डर लग रहा था। दीवा ने आर्यांश को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। दीवा ने मन ही मन कहा, ये इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है? मैंने तारे देखने को ही तो कहा था, मुझे कोई बड़ी गलती हो गई क्या? जरूर मैंने इसकी किसी बुरी याद को ताज़ा कर दिया, वरना इसके जैसा परफेक्ट इंसान अकेले कैसे रह सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि आर्यांश इसलिए मेरे साथ रहना चाहता है क्योंकि मैं इसके पिछले प्यार की तरह दिखती हूँ या फिर इसकी याद दिलाती हूँ? आर्यांश के बिहेवियर ने दीवा को शॉक में डाल दिया था। उसके बाद वो दीवा को लेकर घर आ गया। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। घर आते ही आर्यांश सीधा स्टडी रूम में चला गया। दीवा चेंज करके रात के वक्त स्टडी रूम के बाहर घूम रही थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आर्यांश से बात कर सके। मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? रात को आर्यांश को दूध पीकर सोने की आदत है, मैं दूध का ग्लास लेकर जाऊं तो क्या वो मुझ पर गुस्सा करेगा? दीवा चहलकदमी करते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। इस बीच सुमन वहां पर आई, उनके हाथ में दूध का ग्लास था। उसने दीवा को वहां परेशान हालत में खड़े देखा तो पूछा, मिस गोयनका, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो, मैं आर्यांश के लिए दूध लेकर जाने का सोच रही थी, क्या ये मैं अंदर लेकर जाऊं? दीवा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मिस्टर कपूर ने सख्त हिदायत दी है कि उनके स्टडी रूम में और फोर्थ फ्लोर पर मौजूद गोल्डन रूम में कोई नहीं जाएगा। बाकी इस घर में जितने भी कमरे हैं आप उन्हें जाकर देख सकती हैं, सुमन ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? दीवा ने चौंकते हुए पूछा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन सर ने सख्त मना किया है इसलिए आपको समझा रही हूँ। आप उनके सामने भी इस बारे में बात मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें आप पर गुस्सा आ जाए, सुमन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। दीवा ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वो आर्यांश की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसने सुमन की बात पर अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से अपने कमरे में आ गई थी। जैसा आर्यांश का मूड था उससे साफ था कि वो आज रूम में नहीं आने वाला था, तो दीवा अकेले ही सो गई। हमेशा की तरह आज वो फिर एक बहुत बुरा सपना देख रही थी। दीवा सपने के अंदर एक जंगल में चल रही थी जहाँ चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दीवा वहां फंसा हुआ महसूस कर रही थी और मदद के लिए बुला रही थी। प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये कौन सी जगह है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दीवा सपने में बड़बड़ा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि उसने असल में चादर को कसकर खाम लिया था। सपने में चलते हुए दीवा गिरने वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया था। उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो दीवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। उस शख्स के आते ही कोहरा थोड़ा हटने लगा था। दीवा ने उस शख्स को देखा तो वो समय था। उसे देखकर दीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, समय समय तो तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरा हाथ पकड़े रहना, समय ने मुस्कुराकर कहा। दीवा सपने में समय का हाथ पकड़े उसे कोहरे से बाहर निकल रही थी। नींद में भी वो समय का नाम बड़बड़ा रही थी। ठीक उसी वक्त आर्यांश उसके कमरे में आया था। उसने दीवा को परेशान देखा तो वो उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से समय का नाम सुनकर आर्यांश का मूड बिगड़ गया था। अब ये समय कौन है? अब क्या मैं इसके सपनों में भी नहीं आता हूँ? और आता भी हूँ तो क्या इसे बुरी तरह डरा देता हूँ? आर्यांश ने हाथ बांधते हुए कहा। वो दीवा को गुस्से में घूर कर देख रहा था। उसे इस बात का गुस्सा नहीं था कि वो दीवा के सपनों में था, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि दीवा सपने में किसी समय के साथ थी। लगता है इसे अपने घर नहीं जाना है, तभी ये मेरे सामने किसी और लड़के का नाम ले रही है, आर्यांश ने गुस्से में कहा और फिर बेडसाइड पर रखा पानी का ग्लास दीवा के मुंह पर उड़ेल दिया था। दीवा ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा आर्यांश उसके सामने किसी भूत की तरह खड़ा हुआ था। उसका ये अंदाज देखकर वो घबरा गई थी। अचानक आर्यांश उसके पास आकर बैठा और उसे पकड़कर बोला, ये समय कौन है? आर्यांश के मुंह से समय का नाम सुनकर दीवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसके मुंह से कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था, तभी आर्यांश ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। दीवा दर्द से हल्का सा चिल्लाई, तुम तो कमाल की लड़की हो, यहाँ मेरे साथ रहती हो और तुम्हारे जुबान पर किसी समय का नाम है। मुझे बताओ कौन है ये समय जो तुम्हारे सपनों में मेरी जगह आ रहा है? कहीं तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं? आर्यांश ने दांत पीसते हुए पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, दीवा ने धीमी दर्द भरी आवाज में कहा। आर्यांश के इस तरह पकड़ने पर उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखें नम होने लगी थी। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो फिर बताओ कि ये समय कौन है? आर्यांश ने फिर से वही सवाल दोहराया। वो उस समय एक लड़की का नाम है, मेरे साथ लंदन में पढ़ती थी, सपने में वो मुझे दिखी थी, बस इसी वजह से मैं उसका नाम ले रही थी, दीवा ने झूठ बोला। वो जानती थी कि अगर उसने ये बताया कि समय उसका फ्रेंड है तो वो और गुस्सा होने वाला था। लेकिन समय तो लड़कियों का नाम नहीं लग रहा है, आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा। हाँ, उसका नाम थोड़ा अजीब है, हमें भी अजीब लगता था, पर हम खुद थोड़ी ना अपना नाम सेलेक्ट करते हैं, दीवा ने छटपटाते हुए जवाब दिया। आर्यांश ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। वो बोला, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ कि समय किसी लड़की का नाम है, लेकिन उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोल रही। अगर मेरे सामने तुम्हारा सच आया तो तुम्हें मैं पागलखाने में डलवा दूंगा, दीवा गोयनका।
हालांकि आर्यांश ने उसे डराने के लिए ये कहा था, लेकिन दीवा सच में घबरा गई थी। वो जानती थी कि आर्यांश ऐसा कुछ कर सकता है, वो आर्यांश के सामने समय का नाम लेकर उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। दीवा को छोड़ने के बाद आर्यांश ने देखा कि उसके गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। ये देखकर आर्यांश को गिल्ट फील हुआ और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया था। आर्यांश के जाते ही दीवा ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, अजीब मुसीबत है, क्या अपनी परेशानी में मैं अपने दोस्त को भी सपने में नहीं देख सकती हूँ? अगर मैंने इसको समय के बारे में बताया तो ये तो उसे ढूंढकर उसकी जान ले लेगा, ये इतना अजीब क्यों है? जो भी हो, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा, वरना ये फिर से उल्टी सीधी हरकत करने पर उतर आएगा। दीवा तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची। रात को उसने आर्यांश के साथ अच्छा टाइम बिताया था, लेकिन फिर अचानक से वो नाराज हो गया। सुबह भी दोनों में अनबन हो गई। दीवा को लगा कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पर उससे बात कर लेगी, लेकिन वहां सिर्फ एक ही प्लेट रखी हुई थी। आर्यांश वहां से जा चुका था, उसे वहां न देखकर दीवा का चेहरा उतर गया था। आखिर वो मेरे साथ है ही क्यों, जब उसे सिर्फ बेड जितना ही मतलब होता है? उसका जब मन करता है वो आ जाता है और जब मन करता है चला भी जाता है। क्या मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा लगता है इस बड़े से घर में मैं अकेले रहती हूँ, कोई मुझे जान से मार भी दे तो सिक्योरिटी भी नहीं है, दीवा ने मन ही मन कहा। कहीं ना कहीं उसे आर्यांश के साथ रहने की आदत हो गई थी और अब उसे अपने सामने न देखकर दीवा को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। दीवा को इस तरह मायूस देखकर सुमन उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस गोयनका, मैंने आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, सर पहले ही जा चुके हैं। सुमन आगे भी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर वो रुक गई। एक औरत होने के नाते वो दीवा के इमोशंस समझ सकती थी। किसी भी औरत को एक आदमी का साथ हर तरीके से चाहिए होता है, लेकिन आर्यांश का बर्ताव कई बार सच में काफी ठंडा पड़ जाता था। मुझे मत बताइए सुमन माँ, मुझे पता है कि वो मुझे छोड़कर हमेशा की तरह चला गया है, दीवा ने भारी आवाज में कहा और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। उसका और आर्यांश का रिश्ता ऐसा ही था, कभी बहुत ज्यादा अच्छा होता तो कभी बहुत खराब। जब उनका रिश्ता अच्छा होता तो वो उसे किसी सपने की तरह लगता और खराब होने पर ऐसा लगता जैसे वो आर्यांश की एक पपेट के अलावा और कुछ नहीं है। दीवा के इमोशन समझते हुए सुमन ने उसे समझाते हुए कहा, आप जानती हैं ना वो बहुत बिजी रहते हैं। सुमन आगे कुछ कहती उससे पहले दीवा ने कड़वाहट से कहा, ठीक है सुमन, आप उसकी तरफ से एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, मैं जानती हूँ कि उसकी लाइफ में मेरी औकात क्या है। दीवा बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए थी। दीवा अपना रोना कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी पलके झपका रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं तुम्हारा एक खिलौना हूँ जो सिर्फ तुम्हारे खेलने के लिए है, जिसे तुम दूसरों को कभी दिखा तक नहीं सकते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो आर्यांश, मैंने सोचा था कि कुछ दिन बचे हैं उन्हें अच्छे से बिताकर आराम से इस रिश्ते को खत्म करेंगे, लेकिन नहीं, बीतते दिनों के साथ मुझे तुमसे और नफरत हो रही है। आई हेट यू आर्यांश कपूर। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। दीवा को अचानक से इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहीं वो सच में प्रेग्नेंट तो नहीं? आगे आपको पता चल जाएगा, पढ़कर समीक्षा दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।